भारत में केंद्रित संघवाद क्यों? Why centralized federalism in India? भारत में केंद्रित संघवाद या शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। एक, पुराने अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। भारत का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जब भी केंद्रीय सरकार कमजोर हुई, हम पराधीन हो गए। आपसी झगड़े तथा विभिन्नताओं के कारण लोग आपस में बंटे रहे तथा मुसलमान, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज शासकों ने हमारी इस कमजोरी का लाभ उठाया। अतः अब स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता कोई भी ऐसी गलती पुनः नहीं करना चाहते थे। दो, समय की मांग, नीड ऑफ द टाइम। जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय की स्थितियां, भारत में सुदृढ़ केंद्रीय शासन प्रणाली स्थापित किए जाने की मांग करते थे। देशी रियासतों का एकीकरण, शरणार्थियों को पुनः स्थापित करना, सांप्रदायिक दंगे तथा क्षेत्रवाद की उभरती हुई प्रवृत्तियों को दबाने के लिए सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की आवश्यकता थी। तीन, बाहरी प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। भारत की बाहरी प्रभुसत्ता को हर समय कोई न कोई खतरा बना रहता है। 1948 में भारत पर पाकिस्तान ने, 1962 में चीन ने तथा 1965 तथा 1971 में पुनः पाकिस्तान ने आक्रमण किया। आज पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को उत्साहित कर रहा है। अतः खतरों से निपटने के लिए सुदृढ़ केंद्रीय सरकार अत्यावश्यक है। चार, भारत के संतुलित विकास के लिए, फॉर द बैलेंस्ड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। लंबी पराधीनता के कारण भारत की आर्थिक दशा काफी बिगड़ गई थी। कृषि तथा कुटीर उद्योग बर्बाद हो चुके थे। अतः इस सब के पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। इस सब के लिए सारे भारत को इकाई मानकर संतुलित विकास के लिए एक समान नीतियों तथा केंद्रित योजनाबंदी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की आवश्यकता थी, जो कि एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार ही कर सकती थी। पांच, केंद्रीयकरण की विश्वव्यापी प्रवृत्ति, यूनिवर्सल ट्रेंड टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। संसार के लगभग सभी देशों में आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, जन कल्याणकारी राज्य की चाहत, अर्जेस ऑफ वेलफेयर स्टेट तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के डर, फियर ऑफ इंटरनेशनल वॉर के कारण केंद्रीय सरकार की शक्तियों में व्यापक वृद्धि हुई है तथा भारत इन प्रभावों से अछूता कैसे रह सकता था। इन समस्याओं ने भारत को भी प्रभावित किया है। छह, स्थानीय महत्ता के विषय राष्ट्रीय महत्ता के विषय बन गए हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल सिग्निफिकेंस हैव बिकम ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस। कल तक जिन विषयों की स्थानीय महत्ता थी, आज वे राष्ट्रीय महत्ता के विषय बन गए हैं तथा आज वे राष्ट्रीय नीतियों की मांग करते हैं। इस संबंध में पॉल एपलबी ने कहा है, महामारी केवल एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहती, इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य भी अब एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। आज कृषि तथा मछली पालन का केवल स्थानीय महत्व नहीं अपितु राष्ट्रीय महत्व है। सात, प्राचीन सुदृढ़ केंद्र की परंपरा, ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रांग सेंटर। 1870 तक भारत में पूर्ण एकात्मक सरकार थी। 1870 में लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीयकरण पर बल दिया तथा 1919 तथा 1935 के कानूनों के अनुसार सीमित प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई, परंतु केंद्र को सुदृढ़ रखा गया। इसका भारत की वर्तमान शासन प्रणाली पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। आठ, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। आज समूचे संसार में वैश्वीकरण का बोलबाला है, जिसके परिणाम स्वरूप सारा संसार एक विश्व ग्राम, ग्लोबल विलेज में बदल चुका है। वैश्वीकरण के प्रभावाधीन आज मंडियों का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स हो चुका है। पेज 49, और समूचा विश्व एक संयुक्त विश्व मंडी में बदल चुका है। आज वस्तुओं, पूंजी, तकनीक, मानव श्रम आदि का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की दीवारें ढह रही हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र में घटने वाली घटनाओं से अछूता नहीं रह सकता, जैसे यूरोपीय देशों में पैदा हुई आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन ने विश्व के लगभग प्रत्येक राष्ट्र को प्रभावित किया है। उदाहरणतः यूरो जोन संकट, ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है, जिस कारण भारतीय रुपए का मूल्य कम हुआ है और देश के आर्थिक विकास की गति धीमी हुई है। इन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए मजबूत केंद्रीय सरकार की जरूरत है। ऊपर लिखे स्थितियों के कारण आज जरूरत प्रतियोगी संघात्मक प्रणाली कॉम्पिटिटिव फेडरेशन की नहीं, अपितु सहयोगी संघात्मक प्रणाली कोऑपरेटिव फेडरेशन की है, ताकि केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग से देश का संतुलित विकास कर सके और देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सके। आज देश को अनेक आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके मुकाबले के लिए केंद्र और राज्यों के बीच पूरे तालमेल की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री यूनियन होम मिनिस्टर के अनुसार देश के 223 जिलों में माओवादी हिंसा मोएस्ट वायलेंस फैल चुकी है, जिसके साथ निपटना एक बड़ी समस्या है। यद्यपि कानून व्यवस्था कायम करना राज्यों का दायित्व है, परंतु राज्य अकेले इस समस्या को नहीं सुलझा सकते और इसके लिए उन्हें केंद्र के भरपूर सहयोग की जरूरत है। इसके अतिरिक्त सीमा पार से आने वाले आतंकवादी देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियां करते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आजकल देश को बहुत सारी जान और माल की क्षति उठानी पड़ रही है। अतः ऐसी स्थिति के साथ निपटने के लिए सहयोगी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म समय की जरूरत है। केंद्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी सहयोगी संघवाद की स्थापना पर बल दिया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके द्वारा स्थापित नीति आयोग की गवर्निंग परिषद गवर्निंग काउंसिल के राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघीय क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सदस्य बनाया गया है।